قرآنی قصے۔
دوستو، साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह हदीद की 16वीं और 17वीं आयतें कब नाजिल हुई थीं। एक दिन पैगंबर इस्लाम ने अपने अनुयायियों से फरमाया, तुम में से कौन हर दिन रोज़ा रखता है? इसके जवाब में एक गैर अरब ताज़ा मुसलमान ने कहा, हे ईश्वरीय दूत, मैं। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने पूछा, तुम में से कौन है जो पूरी रात इबादत व उपासना करता है? इसके जवाब में उसी गैर अरब ताज़ा मुसलमान ने कहा, मैं, हे ईश्वरीय दूत। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि तुम्हें से कौन है जो हर रोज़ पूरे कुरान की तिलावत करता है? इस बार भी उसी गैर अरब ताज़ा मुसलमान ने कहा, मैं, हे ईश्वरीय दूत।
उस समय पैगंबर इस्लाम के जो अनुयायी वहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक अरब ने सोचा कि ताज़ा मुसलमान होने वाला गैर अरब व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उससे रहा ना गया। उसने कहा कि मेरा घर इस गैर अरब ताज़ा मुसलमान के घर के पास है। अधिकांश दिनों को मैंने इसे खाते देखा है, तो वह कैसे रोज़ा रखता है? इसी तरह अधिकांश रातों को सोता है, और तो यह कैसे पूरी रात उपासना करता है? इसी तरह मैंने बारंबार दिन को इसे खामोश रहते भी देखा है, तो यह पूरे कुरान की तिलावत कब और कैसे करता है?
उसकी इस बात पर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बेहतर है कि इसका जवाब खुद उसी व्यक्ति से पूछते हैं। इसके बाद उस गैर अरब ताज़ा मुसलमान होने वाले व्यक्ति ने कहा, हम महीने में 3 दिन रोज़ा रखते हैं, और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि जो भी एक नेक काम अंजाम देगा उसे उसका 10 बराबर दिया जाएगा, और शाबान महीने के अंतिम रोज़ों को रमज़ान महीने के रोज़ों से मिला देता हूँ, तो इस प्रकार पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलता है। इसी प्रकार उस ताज़ा मुसलमान होने वाले गैर अरब ने कहा, मैंने पैगंबर इस्लाम से सुना है कि जो व्यक्ति रात को वज़ू करके सो जाए तो उसे पूरी रात की उपासना का सवाब मिलता है, और जो 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करे उसे पूरे कुरान की तिलावत का पुण्य मिलता है।
पैगंबर इस्लाम उस ताज़ा मुसलमान की बात सुनकर मुस्कुराए, यानि मुस्करा कर उसकी बात की पुष्टि कर दी। यह ताज़ा मुसलमान कोई और नहीं था, यह सलमान फारसी थे, जिन्होंने वास्तविकता और सच्चाई का पता लगाने के लिए विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं को देखा और अंत में ईश्वरीय धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लिया और पैगंबर इस्लाम के निकट अनुयायियों में से हो गए। इस प्रकार से कि पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया है कि सलमान हम अहले बैत में से हैं। सलमान के बारे में एक हदीस में कहा गया है कि वह ईमान के 10वें दर्जे पर हैं।
सलमान एक ईरानी थे। उनका नाम रोज़े बे था। उनका जन्म एक जरतुश्ती अर्थात पारसी परिवार में हुआ था, और वो जवानी तक जरतुश्ती रहे और अग्निकुंड में सेवा देते रहे। परंतु चूंकि वो बहुत जिज्ञासु जवान थे और उनके बहुत सारे सवाल थे, इसलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और ईसाई बन गए और एक काफिले के साथ ईरान से चले गए। इस तरह उनके अनुभवी जीवन का आरम्भ हुआ। शाम, अंताकिया, हलब, इस्कंदरिया और मौसिल आदि क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की, यहां तक कि हिजाज में उन्हें एक दास के रूप में बेच दिया गया, और उन्होंने अपनी गुलामी की ज़िंदगी के कुछ भाग को पवित्र नगर मदीना में गुजारा, और पैगंबर इस्लाम से मुलाकात के बाद उन्हें अपने मालिक से आज़ादी मिली, और आज़ाद होने के बाद वे पैगंबर इस्लाम के निष्ठावान अनुयायियों में शामिल हो गए।
हज़रत सलमान की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने विभिन्न धर्मों की मूल शिक्षाओं के संबंध में बहुत ही चिंतन मनन किया था। उन्होंने गिरजाघर और अग्निकुंड का भी दौर देखा था। पैगंबर इस्लाम की सेवा में पहुंचने से पहले हज़रत सलमान दसियों विद्वानों और उपासकों से मुलाकात कर चुके थे। और इन विद्वानों के ज्ञान से भी बहुत लाभ उठाया था। इसी प्रकार हज़रत सलमान ने फारसी, रोमी और यहूदी धर्म की बहुत सी किताबों को पढ़ा था। उन्होंने तौरात, इंजिल और जबूर जैसी किताबों का अध्ययन भी किया था। वह आर्याई, सामी और हिब्रू जैसी विभिन्न भाषाओं को जानते थे। जब वह हिजाज गए तो वहाँ उन्होंने ईश्वरीय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अरबी भाषा भी सीख ली। और सीधी सी बात है कि फारसी उनकी मातृभाषा थी और वे उसे भी जानते थे।
पैगंबर इस्लाम हजरत सलमान की बहुत प्रशंसा करते थे और उन्हें समाप्त न होने वाला ज्ञान का खजाना कहते थे। पैगंबर इस्लाम एक स्थान पर हजरत सलमान की प्रशंसा में फरमाते हैं, सलमान ज्ञान का वो समुद्र है जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। इसी प्रकार पैगंबर इस्लाम ने एक स्थान पर कहा है कि सलमान हम अहले बैत में से हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपने किसी भी अनुयायी के बारे में नहीं कहा है कि वो हम अहले बैत में से है। पैगंबर इस्लाम ने ये सौभाग्य केवल हजरत सलमान को प्रदान किया है।
यहाँ पर एक बिंदु का उल्लेख ज़रूरी है और वह यह है कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि पैगंबर बात ही नहीं करते मगर यह कि वह ईश्वरीय वाणी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी आम आदमी ने नहीं है कि सलमान हम अहले बैत से हैं, बल्कि 1,24,000 पैगंबरों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे अफजल पैगंबर ने यह बात कही है। हजरत सलमान का स्थान समझने के लिए पैगंबर इस्लाम की यह हदीस काफी है।
पैगंबर इस्लाम मक्का से पलायन करके मदीना चले गए थे और इस पलायन को एक वर्ष का समय बीत गया था। बहुत से लोग मूर्तियों की पूजा अर्चना भूल बैठे थे। हर रोज कोई न कोई मुसलमान होता था। इस बीच कुछ अवसरवादी भी मुसलमान हो गए थे और ये लोग दिल से न तो इस्लाम धर्म स्वीकार किए थे और न ही दिल से पैगंबर इस्लाम को मानते थे। इन लोगों का सारा प्रयास मुसलमानों के बीच फूटवा मतभेद डालना था। इस प्रकार के मुनाफिक लोग पैगंबर इस्लाम के स्थान को कम करने और पवित्र कुरान की उपेक्षा करने के लिए हेरा फेरी हो चुकी तौरात में कही गई बातों को प्रमाण के तौर पर पेश करते थे।
एक दिन वे लोग यानी मुनाफिक पहले से तैयार योजना के अंतर्गत हजरत सलमान फारसी के पास गए और उनसे कहा कि उनके लिए कुछ बातें तौरात की पढ़ें और एक कहानी सुनाएं। वह समय था जब महानिश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह यूसुफ की आरंभिक आयत नाजिल की जिसका अनुवाद है, हम वही और कुरान के जरिए आपके लिए बेहतरीन किस्से बयान करते हैं और यद्यपि आप इससे पहले उससे बेखबर थे। हजरत सलमान ने इस आयत को सुनने के बाद मुनाफिकों से कहा, यह कुरान गुजरे हुए लोगों के जीवन के बेहतरीन किस्से को बयान करता है और तुम्हारे लिए दूसरी किताबों से अधिक बेहतर व लाभदायक है।
ये सुनकर मुनाफिकीन जनाब सलमान के पास से चले गए मगर कुछ ही देर के बाद वे दोबारा जनाब सलमान के पास लौट आए और पहले वाली मांग दोबारा दोहराई। उस वक्त महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह जुमर की 23वीं आयत नाजिल की। इस आयत में महान ईश्वर कहता है, अल्लाह ने बेहतरीन बात अर्थात कुरान नाजिल किया है और उसकी समस्त आयतें फसाहत व बलागत के दृष्टि से अर्थात साहित्यिक दृष्टि से अपने शिखर पर हैं। उसमें शिक्षाप्रद कहानियां हैं। जो लोग अल्लाह से डरते हैं जब उसकी तिलावत करते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं और जब अल्लाह की रहमत व कृपा की आयतों की तिलावत करते हैं तो उनके दिलों को आराम व सुकून मिलता है। यह अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन व हिदायत है। वो जिसकी चाहता है हिदायत करता है और जिसे अल्लाह उसकी हालत पर छोड़ दे तो कोई भी उसकी हिदायत नहीं कर सकता।
जब महानिश्वर ने पवित्र कुरान की यह आयत नाजिल कर दी तो मुनाफिकों ने कुछ समय तक अपनी मांग नहीं दोहराई, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मुनाफिकों ने तीसरी बार अपनी मांग दोहराई और वे सब जनाब सलमान के पास आए। उस वक्त महानिश्वर ने पवित्र कुरान के सुरे हदीद की 16वीं और 17वीं आयतें नाजिल की। इन आयतों में महानिश्वर कहता है, क्या अभी वह समय नहीं आया कि अल्लाह के मुकाबले में उनके दिल निष्ठा से झुक जाएं और इस प्रकार की बातों से पीछे हट जाएं और जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उस पर ध्यान दें और उन लोगों की तरह न हो जाए जिन पर इससे पहले किताब नाजिल की जा चुकी है और लंबा समय बीत गया और उनके दिलों में जंग लग गया और उनमें से बहुत से फासिक व धर्म भ्रष्ट हो गए।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान की जिन आयतों को पैगंबर इस्लाम पर नाजिल किया है, अगर इंसान उनमें चिंतन मनन करे तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा और महान ईश्वर उसका मार्गदर्शन करेगा। मगर जिसे अल्लाह उसकी हालत पर छोड़ दे तो कोई भी उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि जब उन पर पवित्र कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके दिल कांप उठते हैं और उनके ईमान में वृद्धि हो जाती है और इस बात का उल्लेख महान ईश्वर ने अपनी किताब में किया है। इससे एक बात की शिक्षा ये मिलती है कि ईमान में वृद्धि करने का एक तरीका पवित्र कुरान की तिलावत है। जो इंसान पवित्र कुरान की तिलावत अधिक करता है वो बहुत से गुनाहों से परहेज़ करता है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे इंसान का ईमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुनाहों से परहेज़ भी बढ़ता जाता है। और महान ईश्वर ने उन लोगों को खुशखबरी दी है जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया।
पवित्र कुरान की इन आयतों से एक सीख मिलती है कि इंसान को हक व सत्य के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए और उन लोगों की भांति नहीं होना चाहिए जिन पर कुरान से पहले दूसरी आसमानी किताबें नाजिल की जा चुकी हैं। महानिश्वर ने यह भी कहा है कि जिन लोगों पर कुरान से पहले दूसरी आसमानी किताबें नाजिल की जा चुकी हैं उनमें से अधिकांश धर्म भ्रष्ट हो गए। सारांश यह है कि जिन लोगों पर आसमानी किताबें नाजिल की गई ज़रूरी नहीं है कि वे मोमिन भी हों। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।